कहां जाऊं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता निकलने का। अब जो भीतर है बैठा हुआ, उस देख रहा है उस पक्षी को, उसको हंसी आती है कि अरे बुद्धू है, जिस खिड़की में से आया है झट से चाहे तो उसी से निकल सकता है, लेकिन लेकिन क्या करें, उस पक्षी को कौन समझाए। उस पक्षी की समझ में तो इतना ही आता है कि जिस खिड़की से आके मैं फंस गया हूं उसी खिड़की से बाहर कैसे निकलूंगा, ये खिड़की तो मुझे फंसाने लगी। उसका उसका लॉजिक तो बहुत परफेक्ट है, जो जो चीजें मुझे संसार में फंसाने वाली हैं उनसे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं। लेकिन उस पक्षी को कभी अगर ये समझ में आ जाए कि खिड़की ने नहीं फंसाया, मेरी दिशा अगर मैं बदल लूं तो वही खिड़की मुझे बाहर निकलने में भी मदद कर सके। जिस आसक्ति से मैंने खिड़की के भीतर प्रवेश किया है, अगर उसी आसक्ति को खत्म कर दूं कि यहां इस कमरे में कुछ खाने पीने की चीज मिलेगी, यही आसक्ति मुझे इस खिड़की से भीतर लाई है, खिड़की भीतर नहीं लाई है, उस आसक्ति को अगर मैं छोड़ दूं तो वही खिड़की विपरीत दिशा में मैं उड़ूं तो मुझे बाहर निकलने में भी मदद करेगी। इतना ही जीवन के बारे में है, ऐसा ही जीवन के बारे में हम इस संसार में अपने जीवन को जिस तरह से फंसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब हमें इससे निजात पाने का, इससे मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो अपनी दिशा बदल लें, और जिन चीजों में हम अपने हाथ से उलझ गए हैं उनसे हम सुलझना चाहें तो आसानी से सुलझ सकते हैं। सीढ़ियां व्यक्ति को सिर्फ गिराती नहीं है, व्यक्ति चाहे तो उनसे ऊंचाई भी छू सकता है। सीढ़ी एक ही है, हम गिरना चाहें, नीचे आना चाहें तो उसी से नीचे आ सकते हैं, और उसी सीढ़ी से हम चाहें तो ऊंचाई छू सकते हैं। मनुष्य जीवन भी एक सीढ़ी की तरह है, हम चाहें तो अपना पतन बहुत नीचे तक जा सकते हैं, और हम चाहें तो अपना उत्थान बहुत ऊंचाई छू करके और कर सकते हैं। ये निर्णय हमारे हाथ में, लेकिन ये निर्णय कौन लेगा? जब जब निर्णय लेने की बात आती है, मैं अपने राग द्वेष और मोह से प्रेरित होकर के अपने जीवन के सारे निर्णय लेता हूं, और फिर मैं जब राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के निर्णय लेता हूं तो फिर मैं चुनूंगा क्या? मेरे सामने अगर दो चीजें रखी जाएं, एक संसार और एक संसार से मुक्त होना, और जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे अरहंत सिद्ध भगवान का रास्ता, तो हम क्या चुनेंगे? राग द्वेष मोह से प्रेरित व्यक्ति तो संसार ही चुनेगा, और कोई चीज चुन ही नहीं सकता। तब फिर तब तो बहुत मुश्किल हुई, अब हम कैसा करें? तो इतना ही काम करना है कि अपने उस राग द्वेष को और मोह को एक दिशा दे दें। अभी राग है हमारा संसार से, और वही राग अगर हमारा कन्वर्ट हो जाए, राग ज्यों का त्यों रहे, राग भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अभी वो राग भाव भौतिक पदार्थों की तरफ था, भौतिक सुखों की तरफ था, और वही राग अगर आत्म सुख और जिन्होंने आत्म सुख पा लिया है उनकी तरफ हो जावे, तब देखें हमारे जीवन की दशा अपने आप बदलने लगेगी, क्योंकि हमने अपनी दिशा ठीक निर्धारित कर ली है, और हमारे भीतर ये विवेक भी जागृत होता चला जाएगा। क्या हुआ था इस संसार में, कभी एक घटना घटी थी, सबको मालूम है कि जब कौरव और पांडवों के बीच और लड़ाई तय हो गई थी, श्री कृष्ण के सारे प्रयत्नों के बावजूद भी बहुत कोशिश की थी कि ये युद्ध टल जावे, लेकिन नियोग कह लें, नियति कह लें, या कि क्या कहें, हमारी अपनी अज्ञानता कहें, हमारा अपना मोह कहें, और वो युद्ध हुआ था, और अपनों अपनों के बीच में हुआ था। मजा ये है
यहां भी संसार में अगर हम देखें तो एक युद्ध, एक लड़ाई हमारे अपने राग देश और मोह की, हमारे अपनों के प्रति ही निरंतर चलती रहती है। और जब ये तय हो गया कि लड़ाई होगी ही होगी, तब फिर एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ दुर्योधन, दोनों ने तय किया कि अपने अपने मित्रों के पास निमंत्रण देने जाना चाहिए कि वे आए और हमारी तरफ से उस युद्ध में शामिल हो। और होता भी यही है, जब हम संसार से जूझते हैं तो हमारे अपने लोग हमारे साथ हो जाते हैं कि जूझो, दौड़ो और तेज दौड़ो और पालो वो सब चीजें जिनको तुम पाना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि क्यों व्यर्थ इस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो, क्या मिलने वाला है, अपन दोनों जन संतोष से जी लेंगे, ऐसा जीवन साथी होना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा मिलना तो बहुत मुश्किल है, एक अंधी दौड़ में शामिल करते हैं हम एक दूसरे के लिए, और यहां इस तरह हम अपना संसार स्वयं अपने हाथों चुनते हैं, उसे हम स्वयं फॉर्म करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और ऐसा ही हुआ, दोनों निकले और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चले श्री कृष्ण के पास ही चले, उनसे पहले मदद मांगे, और दोनों के अच्छे संबंध हैं उनसे, और दोनों एक साथ पहुंचे श्री कृष्ण के घर। और अपने जीवन में भी अगर झांक के देखें तो ऐसा ही है, अच्छाई और बुराई एक साथ हमारे सामने आती है। जब जब भी हम कोई जीवन का निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि सच बोले तो भीतर से बुराई आवाज देती है, कितनी बार तो बोल के देख चुके, हमेशा घाटे हुआ है, सोच रहे एक बार फिर से। जब जब भी कुछ बुरा करने का मन होता है तो एक बार भीतर से आवाज आती है कि क्या करने जा रहे हो, अपने हाथ से अपना अहित सोच लो एक बार। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। हम कभी सच को चुन लेते हैं तो बुराई हमारे भीतर चुपचाप शांत हो जाती है, और कभी कभी जब हम बुरी चीजों को अच्छाई के बावजूद भी, उसके कहने के बावजूद भी, अंतरात्मा की आवाज को दबा करके भी और आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हम बुराइयों के संसार में उतर जाते हैं। ऐसा ही वहां हुआ। पूरी घटना मुझे लगता है कि सचमुच वैसी घटित हुई हो ना घटित हुई हो, लेकिन एक प्रतीकात्मक तो हमारे जीवन में रोज घटित हो रही, और दोनों एक साथ पहुंचे, और अर्जुन ने देखा, दुर्योधन ने भी देखा कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं, अर्जुन उनके पैर के पास बैठ गए, लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठे, सिर के पास। बुराई सिर पर चढ़कर बोलती है हमेशा, अहंकार हमेशा सिर पर बैठता है, और विनयवान और अच्छाई हमेशा पैरों में ही बैठती है। यह निर्णय अपने आप हो गया था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, वहीं डिसाइड हो गया था उनके बैठने की स्टाइल से। बात को तो फिर सारी लड़ाई हुई और उसके रिजल्ट सामने आए, लेकिन रिजल्ट तो वहीं डिसाइड हो गया। हमारे जीवन में भी हम झांक करके देखें कि कौन हमारे सिर पर बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हावी कौन है, जो चीजें हमारा अहित करती हैं हम जानते हैं, इसके बाद भी वे हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी हैं। जो चीजें हमारा कल्याण करती हैं, जिन चीजों से हमारा हित होने वाला या जिनकी संगति से हित होने वाला है, उनको तो हमेशा अपने चरणों में ही रखते हैं, हां उनसे हम दूर ही रहते हैं। और आंख खुली श्री कृष्ण की, वे सोए नहीं थे। भी विवेक सोता नहीं है, श्री कृष्ण भी नहीं सोए थे, वो तो सिर्फ एक बहाना था। वो देखना चाहते थे कि देखें कौन क्या करता है, दोनों एक साथ आए हैं कौन कहां बैठता है। अगर वे जागृत होते तो शायद लोगों की दृष्टि में, दुर्योधन और अर्जुन की दृष्टि में वे जागे होते तो शायद कोई और चीज घटित होती, लेकिन उन्होंने उस समय आंख बंद रखना ही श्रेष्ठ समझा। अच्छाई और बुराई के दोनों के एक साथ आने पर विवेक हमेशा आंख बंद करके ये देखता है कि देखें अब क्या होता है आगे, क्योंकि एक साथ आए हैं और एक साथ दोनों को नहीं देखना है। सबसे पहले तो जब आंख खुले तो दृष्टि अच्छाई पर ही पड़नी चाहिए, इसलिए पहले मूंद लो और डिसाइड करने दो इन दोनों को कौन कहां जाता है। और अपने आप डिसाइड हो गया, श्री कृष्ण की आंख खुली और खुलते ही सबसे पहले कहां गई, अर्जुन पर, और स्फोरण उनके मुंह से निकला कब आए। और उससे पहले कि अर्जुन कुछ कहें, दुर्योधन फौरन बोल पड़े, मैं भी आया हूं। अहंकार को हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करना पड़ती है, विनम्र व्यक्ति चुपचाप रह करके अपनी प्रेजेंस अपने आप शो कर देता है, शो करनी नहीं पड़ती। अच्छाई हमेशा साइलेंटली हमारे लाइफ में एंटर करती है और बुराइयां बहुत शोर शराबे के साथ हमारे जीवन में आती हैं, बहुत ये हम अपने जीवन में रोज अनुभव करते हैं। उसको अपनी प्रेजेंस बताना पड़ी, अहंकारी को हमेशा अपनी प्रेजेंस बताना पड़ती है। दुर्योधन को कहना पड़ा कि मैं भी आया हूं, ऐसे कैसे। श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन देखा तो मैंने पहले अर्जुन को है। तब थोड़ा सा दुर्योधन को लगा कि मामला गड़बड़ा गया। अहंकारी को जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब थोड़ी बेचैनी होती है, वैसे नहीं होती, थोड़ा भय लगा उसको, अब क्या होगा। सबसे पहले अर्जुन को देखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अर्जुन से ही सारा कमिट कर ले युद्ध के बारे में, मेरा नंबर भी ना आए। फिर भी मन में आ रहा था कि अगर ऐसा मालूम होता तो अपन वहां बैठ जाते, क्या फर्क पड़ता है। अहंकारी अगर कभी विनयवान बने तो सावधान रहना, वो अपना स्वार्थ साधेगा, उसकी विनय जो है वो सिर्फ अपने भीतर, जब भी बुराइयों के चलते और अच्छी बात आवे तो समझना कि वो अच्छी बात सिर्फ स्वार्थ में आ रही है, बाकी वास्तव में अच्छी बात बहुत कम आती है। ये अपने साथ मिलान करके देखते जाना, कहानी अपनी जगह है पर जीवन की अपनी कहानी से मिलान अगर हो जाए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि सफलता किस बात में मिलेगी, निर्णय मुझे कौन सा लेना है। मेरे जीवन का निर्णय मुझे लेना है और मैं निर्णय लेते समय बहुत दुविधा में हूं, क्योंकि एक तरफ देखता हूं कि संसार जिस तरफ जा रहा है सफलता तो उसी में नजर आती है, और दूसरी तरफ जो इस संसार से पार हो गए हैं वे दिखाई पड़ते हैं तो लगता है सफल तो ये है। उन दोनों में हम बहुत गड़बड़ा जाते हैं। तब इस घटना से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें चुनाव अगर करना हो कि संसार चुनना है या कि भगवत्ता चुननी है, इन दोनों में से क्या चुनना है। श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छा, बोलो अर्जुन क्या चाहते हो, आपसे कुछ मदद चाहता हूं। तो मेरे पास देने को दो ही चीजें हैं, मेरी अक्षौणी सेना जिसमें हाथी घोड़े रथ 1,00,000 होते हैं इतनी बड़ी, और 1,00,000 एक अक्षौणी सेना में पदाती सैनिक होते हैं, 84,00,000 तो रथ होते हैं और उसके उतने ही हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, बहुत बड़ी सेना। वो है एक तरफ और एक तरफ मैं, और मेरे हाथ में मैं कोई भी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब बहुत घबराए दुर्योधन, अर्जुन को तो कोई घबराहट नहीं है, दुर्योधन बहुत घबराए। हमारे भीतर बैठा हुआ दुर्योधन भी ऐसे मौके पर बहुत घबराता है, जब जब कोई ये कहे कि ये संसार और ये भगवान, और हमें प्रायोरिटी ना हो मांगने की, सबसे पहले किसी दूसरे को मांगने की, वो तो हम बहुत घबराते हैं, क्योंकि हमारा मन जो चाहता है वो बहुत स्पष्ट है। अगर हम लोगों में से भी संसार और संसार से बचने का उपाय चाहने के लिए कहा जाए तो एक बार हम भी बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। दुर्योधन मुश्किल में पड़े कि ये क्या हुआ, पैसा मालूम होता तो हम क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अर्जुन को सबसे पहले टॉस तो ये जीत गया, ऐसा लगने लगा कि जैसे सारा युद्ध जीत गया हो। अर्जुन ने क्या मांगा? अक्षौणी सेना नहीं मांगी, अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सारथी बने, आप मेरे रथ की बलगाएं संभाले रहें, रथ की ही क्या मेरे जीवन की बलगाएं आपके हाथ में हो, इतना ही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब दुर्योधन हुए थे कि हम तो सोच रहे थे कि हम इनको चालाकी से जुए में हराया था, अब तो जो अपनी मूर्खता रहे हैं। देखो तो फर्स्ट नंबर इनको मांगने के लिए मिला दो चीजों में से, और क्या मांगा? गैर बुद्धिमान एक निहत्ते आदमी को मांग दिया। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जब संसार के सुख सुविधा की सामग्री और भगवान के बीच हमें क्या चाहिए है, तो एक क्षण को लगता है कि बुद्धिमानी तो संसार की सुख सुविधाएं चुनने में है, कौन पड़े इस झगड़े में जहां अभी सामने सामने ही सारा संसार छूट रहा है और इतने दुख इतनी मुश्किलें पार करके भगवान तक पहुंचेंगे, उस भगवत्ता को हासिल करेंगे। हाथ का सुख छोड़ करके कौन से सुख को पाने की चेष्टा करें, फौरन मन कहता है और हम गड़बड़ा जाते हैं निर्णय लेने में। और दुर्योधन बहुत प्रसन्न है कि अच्छा हुआ, लेकिन हम अगर बहुत गौर से विचार करें कि क्या हमने संसार चुना है तो इसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए। दुर्योधन तो हारे थे, अक्षौणी सेना चुन करके, क्या संसार को चुन करके हम भी ना हार जाएंगे? और आज तक तो हारते ही आए हैं, वो अक्षौणी सेना और ज्यादा कुछ नहीं है, 11 अक्षौणी सेना क्या है? हमारी पांचों इंद्रियां और पांचों इंद्री के विषय और हमारा मन, ये 11 अक्षौणी सेना है, यही हमने आज तक चुना है। हमने नहीं चुना श्री कृष्ण की तरह विवेक को जो हमारे जीवन का सारथ्य करे। श्री कृष्ण अब तो नहीं है यहां, लेकिन आज भी हमारे पास हो सकते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे जीवन का विवेक है। ये तो घटना बहुत स्थूल है, बहुत भारी है। अगर देखा जाए तो एक लड़ाई हमारे साथ पांचों इंद्री मन और उसके विषय, और दूसरी तरफ हमारा विवेक, दूसरी तरफ हमारा अपना अंतरात्मा का जो स्वभाव है, जो हमारी चेतना का शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जब उसको चुनने की बात आती है तो उसे हम एक तरफ रख देते हैं और चुनते हैं वही राग द्वेष और मोह से बना हुआ ये इतना बड़ा संसार। काश अगर एक बार हम ठीक ठीक अपने विवेक को जागृत कर सकें और अपने निर्णय को ठीक से ले सकें, अपनी दिशा निर्धारित कर सकें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बन सके। कोई नहीं आएगा हमारे जीवन को अच्छा बनाने, क्योंकि हमारा किसी से कोई तय तो हुआ नहीं है। क्या किसी से हमने तय करके रखा है कि कोई व्यक्ति आएगा और वो हमारे जीवन को अच्छा बना देगा? किसी के चाहने से और किसी के प्रयास से, दूसरे के प्रयास से किसी दूसरे का जीवन अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि हमारी स्वयं की तैयारी ना हो। और अगर हम तैयार भी हैं और हमारे निर्णय खोटे हैं तब वो तैयारी भी कोई काम की नहीं है। तो पहली चीज, अब हम छोड़ें इस बात को कि अपना जीवन किसी और के द्वारा अच्छा बना लेंगे हम। दूसरी चीज, हम तैयारी करते हैं तो जरा गौर से देखें कि किस तरफ जाने की तैयारी है। अपने जीवन को वाकई हम अच्छा बनाने की तैयारी कर रहे हैं या अपने हाथ से अपने जीवन को और अधिक पतित करने की तैयारी कर रहे हैं? हम संसार चुन रहे हैं या कि भगवान चुन रहे हैं? हम अपनी भगवत्ता चुनना चाह रहे हैं या कि हम वही जो थोड़ा सा भौतिक सुख है उसे चुन रहे हैं। देखें अपन बहुत गौर से, आज संसार में प्रायोरिटी किस चीज को है मुझे बताइए। कदम कदम पर सुबह से शाम तक अगर अपने जीवन में झांक के देखें तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? अगर मंदिर जाने का मन हो तो उसे हम स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, पहले दूसरा काम कर लें फिर उसके बाद जाएंगे। अपने कल्याण की जब बात आती है तो हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? वो बाद में कर लेंगे, पहले और दूसरा संसार का काम है। ये अपने जीवन में झांक के देखना पड़ेगा तो डिसाइड हो जाएगा कि हमारे निर्णय कैसे हैं, हम चाहते का क्या है आखिर, और किस दिशा में हम जाएंगे ये भी हम निर्धारित कर सकते हैं। इतना तो हमारे हाथ में, बाकी अब मनुष्य जीवन मिला है, जिसके यहां पैदा होना था वहां पैदा हुए हैं, जैसा शरीर मिलना था वो मिल चुका है, धन संपत्ति मिलनी थी वो मिल चुकी, नहीं मिलना थी नहीं मिली है, जो कुछ हो चुकना था वो हो चुका है, लेकिन अब मेरे बाकी जीवन के निर्णय मेरे हाथ में, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा भाई जैसा होना था वैसा हो गया, मैं अब दूसरा भाई नहीं पैदा कर सकता। मुझे माता पिता जो मिले हैं वो मिल चुके हैं, मुझे मेजॉरिटी जो मिली है वो मिल चुकी है मुझे, लेकिन इस सबसे मेरा जीवन डिसाइड नहीं होता। जीवन तो मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, अब आगे का जीवन मुझे खुद जीना है और कैसे जीना है इसका निर्णय लेने के पहले हम जरा सोच लें इस चीज को कि सफलता किस चीज में है और असफलता किस चीज में है। उदाहरण हमारे सामने है, सफलता अपने विवेक को जागृत करके और अपने भगवत स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में है, इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने में। अगर थोड़ी सी सफलता मालूम भी पड़ती है तो वो सफलता बहुत लंबे समय तक मिलने वाली सफलता नहीं है। उस सफलता को हम शाश्वत ना माने, बल्कि उस भौतिक सफलता को पा करके गाफिल भी ना हो और निरंतर अपने आत्म विकास के लिए उन तमाम भौतिक उपलब्धियों के बावजूद भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं क्यों है, नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास हैं वे सब मेरे आत्म कल्याण में कारण बने, मेरे पतन में कारण ना बने, क्या ये निर्णय हम अपने जीवन का नहीं ले सकते? ले सकते हैं। मेरे पास जो कुछ भी आज मौजूदा स्थिति में है वो सब अब मैं अपने आत्म कल्याण की तरफ ले जाने के लिए साधन बनाऊंगा, यहां तक कि अपने शरीर को भी, अपने मन और बुद्धि को भी, और अपने धन पैसे संपदा, अपने यश और वैभव तक को, जो मैंने आज तक पाया है, जितनी भौतिक उपलब्धियां मैंने की हैं उन सब भौतिक उपलब्धियों से अब मैं अपने आत्म कल्याण का मार्ग तय करूंगा। अगर ऐसा निर्णय ले लें तो वे सारी भौतिक उपलब्धियां हमारे आत्म कल्याण में भी कारण बन सकती। ध्यान रखना, धन हमारे पतन का कारण भी बन सकता और वही धन हमारे आत्म कल्याण में उसका त्याग कर देने पर हमारे आत्म कल्याण में कारण बनता है और उसका भोग करने पर हमारे पतन का कारण बनता है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हम अपने जीवन को बहुत गौर से देखें। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आती है, मैंने बहुत दिन के बाद वो मन बना पाया है। हमने पता नहीं जब जब भी चुनने का मौका आया है तो हमेशा चूक की है, हमारे अपने निर्णय गड़बड़ा गए हैं। काश अगर हमने एक बार अपने जीवन में अपने जीवन की उस परम विशुद्ध अवस्था को चुनने का निर्णय ले लिया होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती, हम आज इससे भी बेहतर स्थिति में जी रहे होते। लेकिन अभी भी हमारे पास एक अवसर है, एक चांस है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वो घटना शायद मैंने कल दो चार पांच लोगों से पूछ लिया कि मैंने सुनाई तो नहीं है, तो सभी ने कहा कि नहीं सुनाई, और इसलिए मेरा मन बन गया। शायद 99 के बाद मैं वो घटना सुना रहा हूं, मुझे और याद नहीं आ रहा उससे पहले कि कहां कैसे सुनाई थी। एक मां थी और उसका एक बेटा था, और स्थिति यह थी कि थोड़ा सा कमा लिया दिन भर के लायक और खा लिया, घर में जोड़ के रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी। और बेटा तो मां के अलावा किसी और दूसरे को जानते ही नहीं था, वो अपने तक को नहीं जानता था, वो सिर्फ माँ को जानता था। पहली कहो, दूसरी कहो, थर्ड पर्सन कहो, उसके लिए कुल आगे पीछे एकमात्र माँ ही थी, कोई अल्टरनेट नहीं था। अगर शायद उसके पास कोई अल्टरनेट होता तब भी वो चुनता उसमें से सिर्फ मां को ही, और शायद इसीलिए उसके पास सिर्फ मां थी। और एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मां के मन में आया कि ये भला आदमी बन जावे, थोड़ा पढ़ लिख लेवे, अब क्या करे, वो उसे पढ़ने लिखने के लिए कहां भेजे, किससे कहे कि इसे पढ़ा दो। पर फिर भी उसने सोचा कि थोड़ा काम ज्यादा कर लूंगी पर इसे पढ़ाऊंगी। दो पैसे इकट्ठे करके और उसने तय कर लिया पास के स्कूल में उसे भेजेगी। वो स्कूल पास होने पर भी इतना दूर तो था कि बीच में जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था, गांव का स्कूल था। और बेटे को बहुत मना करके तैयार किया कि तुम्हें स्कूल जाना है। बेटे को स्कूल का बहुत मन में एक क्रेज था कि कहां भेज रही है मां, मैं देखूंगा कैसी चीज है वो, क्या होता है वहां। वो तो कुछ जानता नहीं था, पर जब मां ने उसे भेजा तो पहली बार उसे लगा कि अरे ऐसे कैसे, मां तुम नहीं जाओगे क्या वहां। नहीं बेटे, तुम ही जाओ, तब तो मैं ना जाऊंगा। तुमने कहा था कि स्कूल जाना है तो मैं तैयार हो गया, पर तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम स्कूल मेरे साथ नहीं जाओगी, हमने तो सोचा कि तुम स्कूल तुम भी जाओगी। अब मैं क्या समझाए उसको, कैसे समझाए। काश हमारे जीवन में भी और कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही होता, तो हमारे जीवन में कोई विकल्प नहीं होता। हमारे जीवन में जैसे उस बेटे के जीवन में सिर्फ आगे पीछे एक मां थी और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। सवाल सिर्फ इतना सा है, हम तो झट से अगर कोई चीज बेहतर मिलती है तो उसको छोड़ देते हैं जो आज तक हमारे साथ थी। वो स्कूल तो जाना चाहता है लेकिन मां को नहीं छोड़ना चाहता। मैं घर तो जाना चाहता हूं लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ना चाहता। मैं संसार के बीच रहना तो चाहता हूं लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ना चाहता। काश ऐसा ही मेरे मन में भी ये भाव होता तो आज मेरे अपने जीवन का कोई दूसरा ही स्टाइल होता। 24 घंटे मेरे साथ जिसे मुझे रखना चाहिए उसे अगर मैं अपने साथ रखे रहता तो ये संसार फिर मुझे भटका नहीं सकता था, इसके सुख दुख मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या करें, ऐसा हमारे जीवन में घटित हुआ कि जो हमारा अपना था, जो हमारा अत्यंत हमारे भीतर निकट था, उसे हमने भुला दिया और इसको उसको अपने साथ, दुनिया भर को अपने साथ रखे हैं सिर्फ उस एक को छोड़ करके जिसका साथ सच्चा था। मां ने बाप मना करके बेटे को भेजा कि जा, पहली बार वो अपनी मां से अलग थोड़ी देर के लिए हुआ लेकिन उसे ये चीज एकदम समझ में नहीं आएगी। उन लोगों के समझ में नहीं आएगी जिनके बड़े होने तक मां उनके पास रहती है, ये उनके जल्दी समझ में आएगी जिनके बचपन में मां नहीं रहती, एकदम नहीं आएगी समझ में, आपको बहुत मुश्किल से आएगी समझ में। मुझे जिस दिन समझ में आ गई थी तो अभी तक समझ में आई। और वो चला जाता है बेटा, पर उसका मन नहीं लगता वहां पर। और हमारा मन तो सब जगह लग जाता, हम तो भगवान को छोड़कर के बाकी जगह सब अपना मन लगा लेते हैं। जाते जरूर है मंदिर लेकिन वहां से लौटने के बाद वहां भी बैठे रहते तो मंदिर में मन थोड़ी लगता, मन तो वहीं धरा रहता है। हमने तो इतना अपनी दूरी बना ली है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हम निभाते हैं कि हां सचमुच हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं या कि जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है वे हमारे साथ हैं, हम ऐसा फील करते हैं, नहीं कर पाते। वो बेटा वहां पढ़ नहीं रहा है, उसको मां दिखाई पड़ रही है। और वापस लौटता है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है और जंगल का रास्ता उसे बहुत भय लगता है। और लौट करके आकर के माँ से कहता है कि माँ मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? एक तो माँ तुम मेरे साथ नहीं जाती और दूसरे ये कि जंगल में मुझे बहुत भय लगता है। काश ऐसा ही भय संसार में रहते हुए हमें लगता कि हम नहीं जाते उस संसार में, हमें बहुत भय लगता है भगवान, हम अब यहीं रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, आपको हमेशा अपने साथ रखेंगे। दो ही स्थितियां हैं, या तो हम अपने उस परमात्मा स्वरूप को अपने साथ महसूस करें या उसके साथ रहें। वापस लौटने के बाद माँ ने बहुत समझाया लेकिन बेटे ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो तुम मेरे साथ चलोगी तो जाऊंगा। जैसे उस बेटे के अकेले माँ थी, ऐसे ही उस माँ के एक अकेला, उसका सहारा, उसका भगवान था। रात के अंधेरे में बेटे को सुलाकर भगवान के सामने जाके खड़ी हो गई कि मेरे तो तुम्हारे सिवाय कोई और है नहीं, मैं किससे जाके कहूं, बेटा मानता नहीं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, जीवन में मेरा सहारा और कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय, तुम कोई उपाय बताना, हो सके तो उसे समझाना। हम कभी ऐसा नहीं कह पाए। अपने जीवन में जब दुख आए तो सब तरफ तो हमने हाथ फैलाया उन दुखों से बचने के लिए, लेकिन अपने भगवान के सामने हमने कभी, कौन है हमारा भगवान? वो जो उधर बैठा हुआ है वो बाद को है, वो जो भीतर बैठ जाता है वो पहला है, वो भीतर बैठा हुआ भगवान है। उससे कभी नहीं कहा कि इस विपत्ति से बचने का उपाय क्या है। अगर हम फुली डिवोट हो जाएं, हम अपने निर्णय के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का अगर निर्णय ले चुके हैं, उसके प्रति हम समर्पित हैं, तो उसके अलावा हमें कोई और चीज दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। और सुबह हुई, माँ ने जगाया, बेटे ने तो उठने से इनकार कर दिया कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, मैं तुझे अकेले थोड़ी भेज रही हूं। अब पता नहीं मां के मन में ये बात, कल भगवान से प्रार्थना करी थी इसलिए सुबह उठ करके अचानक आई ये बात कि बेटी को ऐसे समझा सकते हैं, मैं तुम्हें अकेले थोड़ी भेज रही हूं। अच्छा तो तुम भी चलोगी? मैं नहीं चलूंगी, पर तेरे साथ तेरे भाई को भेज दूंगी। हां मेरे भाई को? मेरा भाई कहां? मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरे भाई को। मेरा भाई भी है मां, तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? बेटे वो अपने साथ नहीं रहता ना, तो कहां रहता है मेरा भाई? वो कहां मिलेगा मुझे? वो जो तुम कह रहे थे ना, जंगल पड़ता है ना बीच में, उसी जंगल में रहता। अच्छा उस जंगल में मेरा भैया रहता है?
हाँ।
तो मैं अपने भैया से मिल लूंगा और उसी के साथ चले जाऊंगा। मां तुम मुझे तैयार कर दो, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। अब उसके भीतर स्कूल से भी ज्यादा अपने भैया से मिलने का मन हो गया, मैं मिलूंगा अपने भैया से। और तैयार होकर के मां ने भेज दिया, लेकिन बेटे ने चार कदम आके जाके कहा कि तो मां मैं जैसे ही जंगल में जाऊंगा भैया मुझे मिल जाएगा ना? ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो फिर अब सोच में पड़ गई, उसको कह तो दिया, वहां कौन रखा है, कौन मिलने वाला? पर सुनो मिल जाएगा, क्या नाम लेके बुलाऊंगा? तुम कह लो अरंत भैया आओ। अच्छा मेरे भैया का नाम अरंत है? हां तुम्हारे भैया का नाम अरंत है, तो फिर मां मैं अरंत भैया कह के पुकारूंगा तो आ जाएगा, आ जाएगा। अब मां क्या कहे, वो तो मन ही मन सोच रही है कि मैं इस छोटे से बच्चे के साथ क्या कर रही हूं, लेकिन भीतर एक विश्वास है कि मैं जो कर रही हूं वो ठीक कर रही हूं। और भेज देती है, दिन के उजाले में तो जंगल आसानी से पार हो जाता, शाम लौटते समय जंगल में थोड़ा भय लगता है, चकित होकर इधर उधर देखता है कि माँ तो कहती थी कि भैया मिल जाएगा, लेकिन भैया तो मिला ही नहीं। उसने आवाज दी, अनंत भैया मुझे भय लगता है, तुम आते क्यों नहीं? अब वहां कोई हो तो आए, वहां कौन है? और वो निराश तो नहीं होता पर बहुत व्यथित हो जाता है। आधा जंगल उससे पार नहीं किया जाता, एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। रोते रोते कहता कि मां ने तो मेरे से आज तक झूठ कभी नहीं बोला, मां ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन पता नहीं मेरा भैया शायद मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे आवाज देने पर भी नहीं आता। आते क्यों नहीं हूं अनंत भैया, मुझे बहुत भय लगता है। और कहते हैं कि कहीं से आवाज आती है कि तुम डरते क्यों हो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ। और उसे लगता जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो बहुत खुश होता है, देखता है तो उसे लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे अनंत भैया, उसका बड़ा भैया उसके साथ है। और फिर तो रोज का क्रम बन गया कि जंगल में जाता है, आवाज देता कि अनंत भैया आओ, और उसे ऐसा लगने लगता है काश हमने भी ठीक इसी तरह संसार से भयभीत होकर के एक बार अगर आवाज दी होती तो हमारे भीतर से आवाज आती कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और कोई इस संसार में साथ ना हो लेकिन हमारी अपनी भगवत्ता हमेशा हमारे साथ है। लेकिन ये विश्वास हमारे मन में इतना गहरा नहीं जम पाता। रोज ये प्रक्रिया शुरू हो गई, हंसते हंसते जाता था, हंसते लौट के आता था। मां भी चकित है कि क्या हुआ, मैंने तो इसे ऐसे ही कह दिया था पर ये इतना प्रसन्न क्यों है। रोज आके सुनाता है कि आज अनंत भैया ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई, बहुत कहानी सुनाई, मुझे गाने सुनाए, मेरा रास्ता आसानी से पार हो गया। अब मां के मन में वो तो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ के रोती रहती कि ये क्या हुआ, आज तुमने संभाल लिया भगवान, अब ये पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक दिन बेटा उदास घर लौटता है, मां कहती क्या हुआ? गुरुजी ने कहा है कि कल सब बच्चे अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के आएंगे, और इतनी इतनी लेकर के आएंगे कि चार और बच्चों को खिलाई जा सके। मां तुम मेरे साथ अब थोड़ी सी भोजन सामग्री रख देना ताकि चार और बच्चों के काम आ सके और मैं स्वयं भी खा लूं। अब मां क्या कहे, यहां तो उसके पढ़ाने के लिए मां को भी एक बार भोजन नहीं मिल रहा, और वो कैसे कहे कि चार लोगों को खिलाने लायक, मैं कल तुम्हें दे दूंगी। पर कोई नहीं होता जिसका उसके भीतर उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा उसे रास्ता दिखाती है, उसका विवेक उसे रास्ता दिखाता है। और रात के अंधेरे में फिर मां ने हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा भगवान के सामने व्यक्त की कि सुबह तुम ही कोई उपाय बताना, मैं तो कुछ सोच नहीं पाती हूं। सुबह उठता है बेटा और कहता कि मां लाओ, क्या ले जाना है? अरे बेटे मैं तो भूल ही गई, तेरा भैया है ना अरंत भैया, तू उसी से कहना, मेरे पास यहां क्या है तू उसी से कहना, वो जो दे दे वो ले जाना। अरे वाह, मैं अरंत भैया से मांग लूंगा, वो तो मुझे रोज मिलते हैं। और जंगल में जाता है और बैठ जाता पेड़ के नीचे। आओ अरंत भैया, आज तो मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम है। मां ने कहा है कि जो स्कूल में सामान लेके जाना है खाने का वो तुम ही दोगे, तो दो अरंत भैया। अब वहां कौन है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सारे निर्णय अपने हाथ से अगर लेना शुरू कर दे तो कहीं कोई मुश्किल नहीं आती है। और भीतर से प्रेरणा हुई, या ये कहो कि किसी ने मदद करी कि एक दोना तो बनाओ पत्तों का, और उस दोने को पेड़ के नीचे रख दिया और वो सफेद दूध से भर गया वो दोना। पता नहीं उस वृक्ष से कैसी चीज झरती थी, जैसा लेना हो वैसा ले लो। कोई अरंत भैया ने वहां दोना भर के रख दिया हो ऐसा समझना हो तो ऐसा समझ लो, और ये कि अपने प्रयत्न से एक दोने में दूध भर लिया और लेकर के चला। देखा गुरुजी ने, ये गरीब सा लड़का एक दोना भर लेके आया, चल हट, एक तरफ हटा दिया। अब वो क्या करे, यहां इस संसार में जिसके पास भौतिक उपलब्धियां नहीं है, जो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, जो श्रद्धावान है, सरल है, दयालु है, उसे ऐसे ही एक तरफ दुत्कार के खड़ा कर दिया जाता है कि क्या है तेरे पास, है कोई हवेली, कोई महल, कोई कार, कुछ भी तो नहीं है तेरे पास, एक तरफ खड़ा। हम भी तो यही कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा निर्णय अभी बहुत कच्चा है, अभी हमें संसार ही अच्छा लग रहा है। अगर हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो इससे हमें ये मालूम कर लेना चाहिए अपने भीतर। और गुरु जी ने एक तरफ खड़ा कर दिया, वो दीनहीन चुपचाप खड़ा हुआ है, क्या कहे, किससे कहे। सारे बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं, खूब खूब लेके आए हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, और इसके पास क्या है, एक दोने भर दूध है। पर पता नहीं उसके मन में क्या आया, मेरे अनंत भैया ने दिया है, ये कम नहीं पड़ेगा, मैंने जो अपने जीवन में पाया है अगर मैं उसमें संतुष्ट हूं तो वो सारी चीजें मुझे कभी कम नहीं मालूम पड़ सकती। और उसने उस दोने का दूध एक बच्चे के दोने में डाला तो चकित रह गया कि उसका दोना भर गया, और उसने हाथ लगाया कि क्या करता है तू, अब बंद कर, पूरा भर गया और दोने में दूध ज्यों का त्यों है। और फिर तो उसने जिसके दोने में डाला तो भरता चला गया और दोना ज्यों का त्यों बना रहा। अब गुरुजी जो दूर खड़े हुए देख रहे थे, वे भी उसके पास आ गए हैं, अब सिर पे हाथ फेर रहे हैं, अभी दुत्कार रहे थे, अब सिर पे हाथ फेर रहे हैं। ऐसे ही देख लेना अपने जीवन में भी झांक करके कि जब भौतिक सुख सुविधाएं कोई देने लगे तो उसके प्रति कितना प्यार उमड़ता है, और कोई भौतिक सुख सुविधाएं ना दे पावे तो उसके प्रति कैसा भाव मन के भीतर आता है। इसी से मालूम पड़ जाएगा कि हमने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया है। कहते जरूर हम हैं कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन भौतिक पदार्थों की लोलुपता हमारे जीवन में कितनी गहरी है। गुरुजी उसके सिर पे हाथ फेर रहे हैं, बेटे बेटे ये दोना तुम्हें किसने दिया। वो भी बहुत खुश है कि मेरे दोने में से सबके लिए दिया जा सका, और गुरुजी के सामने आंख में आंसू भरे लेकिन चमकती हुई आंखों से प्रसन्न है चेहरे पर मुस्कुराहट। गुरुजी ये मेरे अनंत भैया ने मुझे दिया। अनंत भैया ये कौन है। वो हमारे भैया हैं, तुमसे बड़े हैं क्या। बहुत बड़े हैं वो सबसे बड़े। तो वो तुम्हें मिलते हैं, कहां मिलते हैं। वो जंगल में मिलते हैं। अब गुरुजी को लगा कि कोई बात तो जरूर है। अब चमत्कार को नमस्कार है, अब मिलना चाहिए इनके अनंत भैया से, मिलना चाहिए। मूर्ति में से कोई ऐसा चमत्कार हो जावे तो फिर देखिएगा कि मंदिर में जगह नहीं बचेगी। इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारी अपनी अप्रोच क्या है। हमारी अपनी अप्रोच अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने की नहीं, अपने को भौतिक रूप से समृद्ध बनाने की है। वो चाहे भगवान के चरणों में मुझे भौतिक समृद्धि मिलती हो तो मैं भगवान के चरणों में लेटने तैयार हूं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए भौतिक समृद्धि, सत्ता, यश और वैभव। मेरा अपना चुनाव वही है। बहुत गौर से देखने की चीज है, बहुत गौर से सोचने की चीज है। इससे निर्णय मालूम पड़ जाएंगे कि मेरे विवेक ने क्या निर्णय लिया है। कहता तो मैं वाणी में बहुत कुछ हूं कि मुझे अपने जीवन का बहुत विकास करना है, लेकिन मैं कर कौन सा विकास रहा हूं। और गुरुजी साथ हो गए हैं, चलो बेटे मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मुझे दिखाओ कहां है अनंत भैया तुम्हारे। अच्छा गुरुजी आप मिलना चाहेंगे मेरे अनंत भैया से? वो तो बहुत खुश है कि कोई ने कहा तो कोई मिलना चाहता है। मेरे अनंत भैया से मैं मिलवाऊंगा, आओ गुरुजी चलो। और जंगल में ले जाता है और बड़े खुश होकर के आवाज देता कि अनंत भैया आओ तो, वो जो दूध तुमने दिया था ना वो सबके काम आ गया। और गुरुजी तुमसे मिलने आए हैं अनंत भैया, आज तो आ जाओ तुम जल्दी से। वहां कोई आवाज नहीं आती, ऐसे बुलाने से थोड़ी आवाज आती है। अब उसके मन में आया कि मेरा तो वचन झूठा हो जाएगा, गुरुजी क्या कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे थे कि कोई अनंत भैया है, अगर है तो आते क्यों नहीं है। अब मन ही मन उसकी श्रद्धा हिलोर मारती है और व्यथित होता है कि आज मेरी श्रद्धा को इतने बड़े परीक्षा पर लगा दिया गया है, इतना बड़ा मेरी श्रद्धा का इम्तहान लिया जा रहा है। अगर आज अनंत भैया नहीं आए तो मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। और वो कहता है कि आओ अनंत भैया, तुम रोज तो मुझे आते थे मेरे पास, आज क्यों नहीं आते। तो आवाज आती है, दिखता तो कोई नहीं है, आवाज आती है कि मैं कहीं अलग से और नहीं हूं, मैं तो जिसके भीतर श्रद्धा है उसके पास हमेशा हूं और उसे ही दिखाई पड़ता हूं। अभी अभी तुम्हारे गुरुजी तो संदेह से भर करके आए हैं कि देखें कि कोई होता भी है कि नहीं होता अनंत भैया, इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारी मां को देख सकता हूं, लेकिन अभी गुरुजी को बहुत देर है। भैया घटना तो कुल इतनी ही है, हमारे अपने जीवन में भी अगर हम झांक करके देखें तो हमने क्या चुना है, क्या सचमुच हमने अपना आत्म विकास और अपनी उस भगवत्ता को चुना है। अगर चुना है तो एक बार आवाज देने के बाद वो 24 घंटे हमारे साथ हमें महसूस होगी। एक बार भगवान के दर्शन करके संसार की तरफ जाने पर संसार फिर हमें घेर नहीं पाएगा, फिर तो 24 घंटे हमारे साथ हमारे आत्म कल्याण की भावना बनी रहेगी। यही निर्णय अपने जीवन में हमें बहुत दृढ़ता के साथ ले लेना चाहिए कि अब हमने संसार भी चुन के देख लिया और कोई सुख नहीं पाया, अब मैं एक बार अपने उस भगवत स्वरूप को चुनूं तो हो सकता है कि इस संसार के बीच रह करके भी मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाऊं। हमारे मन में ठीक ऐसी ही श्रद्धा और ऐसा ही विश्वास अपने आत्म कल्याण के प्रति जागृत हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी भावना के साथ आज अपन सब मिल करके नमोकार मंत्र करें कि हमारे जीवन में ऐसी दृढ़ता अपने जीवन को ऊंचा उठाने की आ जाए, जब जब भी संसार और भगवान में से चुनने का अवसर आए तो हम भगवान को ही चुने, संसार को न चुन लें। हम एक साथ बैठ करके नमोकार करें इसी भावना के साथ।
Siddhartha Okay,